रूप गोस्वामी कौन थे, उनका परिचय क्या है। आजकल कर के लोग जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं इस पर रिसर्च करते हैं, रूप गोस्वामी कौन थे, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता कौन थे, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई और उन्होंने क्या किया था, साधारण रूप में इस पर विचार करते हैं। किंतु किसी भी वैष्णव ने अपने जीवन में, अपने साहित्यिक कार्यों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरे पिता माता का नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, वर्ण क्या है, समाज क्या है, किसी भी ने नहीं। न तो वाल्मीकि जी ने लिखा, न व्यास जी ने लिखा, न हमारे ये रूप गोस्वामी ने भी कहीं नहीं लिखा, सनातन गोस्वामी भी ने कहीं नहीं लिखा, किसी ने भी नहीं लिखा, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी नहीं लिखा, हमारे गुरु जी ने भी या वैष्णव अभी भी देखते हैं, किसी ने भी अपना ये लौकिक परिचय नहीं दिया। इसका कारण क्या है, हमने कुछ संक्षेप में मथुरा में बतलाया था, तो अभी मैं थोड़ा सा बतला करके शाम के लिए रखता हूँ। शाम को रूप गोस्वामी के संबंध में, उनकी विशेषताओं के संबंध में हम लोग बतलाएंगे। अभी केवल इसी पॉइंट पर थोड़ा सा मैं विचार करूँगा। किसी का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, मृत्यु कब हुई, ये सच्ची कैसे कहा जाए। रूप गोस्वामी का जन्म कहाँ हुआ, मान लिया कि उनको हम रूप मंजरी मानते हैं, तो उनका जन्म कहाँ हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, इस जगत में, इस जगत की मिट्टी में, पृथ्वी में, पंच भौतिक किसी भी प्रदेश में उनका जन्म नहीं है, इसलिए रूप गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं कि हमारा कहाँ जन्म हुआ, या कोई भी कैसे लिखते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हुआ। कहो जैसे उनके माता पिता कौन थे, आजकल यही रिसर्च होता है, आजकल रिसर्च होता है भोज राजा का लोटा ये है, लोटा होता है उसके संबंध में सच चलता है। अरे ये लोटा 5000 वर्ष का है, और ये लोटा कैसे बना, और इसको कौन कौन पानी पिया, ये आजकल रिसर्च का विषय होता है, जिसमें कुछ भी सिर और पैर नहीं है, आजकल रिसर्च का विषय यही होता है। तो हमारे ये सब आचार्य लोग ऐसे मूढ़ नहीं थे, ये इस पर बातचीत चर्चा करेंगे, वो लोग कहाँ के रहने वाले, कहाँ आए हैं, उनका जब जन्म ही नहीं है तो वो जन्म के लिए क्या बतलाएं कि हमारा कहाँ जन्म हुआ, अंडरस्टैंड। दूसरी बात, उनके माता पिता, अच्छा रूप गोस्वामी के माता पिता कौन है, कहा जैसे नहीं रूप गोस्वामी के तो पिताजी थे, इतने भाई थे, तो ये नकली है, रूप गोस्वामी इसको नहीं मानते, ये सब नकली है, ये तो अदल बदल जाता है। हमारे लाखों जन्म हुए, अभिमन्यु को, अभिमन्यु जब मारा गया तो वो चला गया चंद्रलोक, उसकी आत्मा चली गई, अर्जुन बड़े रो रहे थे, सुभद्रा जी रो रही हैं, सभी लोग रो रहे हैं, कृष्ण उनको लेकर के अर्जुन को चंद्रलोक में गए, देखा जी देखो वो कौन बैठा है, अभिमन्यु बैठा है, 15 वर्ष का किशोर लड़का बैठा था, अर्जुन बेटा बेटा अभिमन्यु कह करके दौड़े उसको गले लगाने के, अभिमन्यु कहे खड़े रहिए, खड़े हो जाओ, कौन बेटा कौन पिता? अरे तुम मेरा बेटा है तो मैं कहता कि तुम मेरा बेटा है, तो ये कैसे? अरे मैं तुम्हारी कितने बार बाप हुआ, कौन कौन जोनियों में मैं तुम्हारा बाप हुआ, और तुम एक जोनी में तुम हमारा बाप हो गया, तो तू कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, वो भी 15 वर्ष के लिए। मैं तो 15 वर्ष के लिए अभी सप्त होकर के गया था इसके लिए, इसलिए आप मेरे पिता नहीं है। मेरे पिता ये तुम्हारे जो सामने ये जो आ रहे हैं ना श्यामले, ये मेरे पिता हैं, पिता के पिता के पिता, और हमारा कोई पिता नहीं। अर्जुन का मुंह भंग हो गया, तुम्हें बेटा मिल गया, चल गया। तो ये वैष्णव में वैष्णव की जो जाति देखता है, सब विच्छेद पाखंडी भवेत ध्रुवम, क्या है वो नारकी होता है। वैष्णव में जाति पाति पिता पुत्र ये सब देखना उचित नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी के पिता कौन थे? तो ये यदि हम लोग लें तो एक तो उनका कोई पिता ही नहीं, दूसरा मान भी लें तो ब्रज के उनके पिताजी जो थे वो पिताजी उनको मान सकते हैं, जिनका नित्य काल ही उनके प्रति ये भाव है कि हमारे हमारी लड़की है, ये एक तो। इसलिए उन्होंने कहीं भी अपना इस पिता का या माता का उल्लेख नहीं दिया, और पृथ्वी पर अपने जन्म का भी कोई परिचय नहीं दिया, है ही नहीं है तो देंगे कहां से? यदि वो देते हैं कि हमारा जन्म बंगाल के किसी एक क्षेत्र में हुआ है, नई घाटी इत्यादि, या कहीं नई घाटी में ही शायद जन्म हुआ था, तो यह गलत है। नई घाटी में उनका जन्म हुआ, इस पृथ्वी में पहले तो बैकुंठ, बैकुंठ से ऊपर गोलोक वृंदावन, वृंदावन पृथ्वी पर है ही नहीं है, पृथ्वी से बहुत क्या है वो अलग है। इसलिए उनका यह जन्म, उनका माता पिता, ये सब जो विचार है ये गलत है, इसलिए उन लोगों ने ये दिया ही नहीं। तो वैष्णव का जो वैष्णव लोग परमार्थिक हैं वो अपना क्या परिचय दे इस जगत का, जो मैं कौन हूं? अधिक से अधिक हमारे गुरु जी ने वर्णन किया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के लिए, ये एक ऐसे महापुरुष हैं जो इस जगत में आकर के अपने को जो कहा कि मैं त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती, इनका यह परिचय कैसा है? बहुत ऊंचा व्यक्ति अपने को सबसे नीचा अपने को मान करके यदि कहता है कोई राष्ट्रपति या राजा ये मैं झाड़ूदार हूं, ऐसा ये परिचय है। कहां ये नयन मंजरी और कहां परिचय दे रहे हैं त्रिदंडी स्वामी। सहज या लोग कहते हैं कि अरे अपने को ये त्रिदंडी स्वामी कहते हैं, परमहंस कहते हैं, ये बड़े तो दंड है, किंतु वो नहीं समझते कि कहां से आकर के और ये सब परिचय दे रहे हैं, जगत का परिचय दे रहा है। इसी तरह से रूप गोस्वामी जगत के कोई व्यक्ति नहीं है, वो वृंदावन के निभृत कुंज के राज वृंदावन के वो मंजरी स्वरूप है। उन्होंने अपना यह परिचय गुप्त रखा, रघुनाथ दास गोस्वामी और दूसरे गोस्वामियों ने उनका यह परिचय जगत में दिया। इनका सबसे प्रधान एक चीज है जो हम शाम को हम लोग बतलाएंगे कि प्रत्येक चीज की भक्ति राज्य में, परमार्थ राज्य में उन्होंने प्रत्येक चीज की अपनी एक परिभाषा दी। इसके पहले आज तक नहीं हुआ था परिभाषा। जैसे पुत्र की परिभाषा क्या है? आत्मा वही जायते पुत्र, अपनी आत्मा से अपने से जो पैदा होता है उसको कहते हैं पुत्र, ये परिभाषा हुई। यदि किसी महिला के गर्भ से पति का पुत्र न होकर के दूसरे से पुत्र उत्पन्न हो तो उसको पुत्र कहेंगे कि नहीं? वो पुत्र नहीं होगा, वो जारज या दूसरा कहलाएगा। ठीक उसी तरह से प्रत्येक चीज की अपनी परिभाषा होती है। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस, ये परिभाषा हुआ ना। इसी तरह से ज्योमेट्री में सब चीज की परिभाषाएं होती है, व्याकरण में भी परिभाषा होती है। बिना परिभाषा की कोई चीज नहीं हो सकती। अभी शुभानंद ब्रह्मचारी ने एक बतलाया ना, जितने आचार्य लोग आए गए वो जीवों की परिभाषा स्थिर करने में ही वेदांत और सब कुछ लगा दिया। शंकराचार्य का प्रधान यही कहना था, जीव ही ब्रह्म है। और हमारे जितने आचार्य थे उन लोगों ने क्या कहा, जीव ब्रह्म नहीं है, वह ब्रह्म का अंश है अथवा उसकी शक्ति से परिणत हुआ है, उसकी शक्ति से बना हुआ परिणाम है, तटस्था शक्ति से उत्पन्न है, वो कभी भी पर ब्रह्म नहीं होगा। ब्रह्म हो सकता है, ब्रह्म हो जाएगा, जितनी लिविंग इंटिटी हैं वो ब्रह्म हो सकती हैं क्योंकि वो चेतन है, किंतु पर ब्रह्म नहीं हो सकती है। यही कृष्ण में और जीव में अंतर है। तो ये सब परिभाषा में ही रह गए सब लोग, जितने भी आचार्य आए। रूप गोस्वामी जी ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने महाप्रभु के आदेश से भक्ति की परिभाषा, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्दना प्रीतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ऐसी परिभाषा दी जो आज तक वेदों में उपनिषदों में इसके बाद में व्यास जी ने इसके बाद के आचार्यों ने भक्ति की परिभाषाएं दी हैं, किंतु इतनी सर्वांग सुंदर परिभाषा दी। जस देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु तथा तसैते कच्चा ही अर्था प्रकाशन से महात्मा, ये उपनिषदों में आया, किंतु भक्ति की परिभाषा उपनिषदों में कहीं नहीं देखी जाती ऐसी। हमारे नारद जी ने अपने सांडिल अपने नारद सूत्र में, सांडिल्य ऋषि ने सांडिल्य सूत्र में उन्होंने भक्ति की कुछ परिभाषाएं दी, जैसे सा परानुरक्त्री ईश्वर, यहाँ पर ईश्वर कौन और अनुरक्ति क्या, ये सब का वर्णन नहीं देखा। ये मन की क्रिया है ना, आत्मा की क्रिया है ना, शरीर की क्रिया है, ये कुछ कहीं बतलाया, किंतु रूप गोस्वामी ने इसे खोल करके बतलाया। श्रीमद् भागवत में यह बतलाया गया, लक्षणं हि भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम अहेतुक्य अव्यवहिता जा भक्ति, ये बतलाया। किंतु कुछ कुछ ऐसा मालूम होता है सर्वांग पूर्ण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ रूप में ये प्रतिपादित नहीं हुआ, जैसे कि रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी के अनुसार ये बतलाया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्दनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, ये भक्ति की ऐसी परिभाषा स्थापित थी जो आज तक किसी भी पूर्वाचार्य ने ऐसी भाषा परिभाषा व्यक्त नहीं की। और ऐसा मालूम पड़ता है कि आने वाले भविष्य में भी इससे ऊपर उठ करके कोई जो व्याख्या हो सकेगी परिभाषा भक्ति की, ये भी असंभव है। इसलिए भूतो क्यों कि रूप गोस्वामी पहले भी महाप्रभु जी के साथ में आए थे। कब आए थे? ब्रह्मा जी के एक दिन पहले आए थे। तो ये भक्ति तो नित्य है ना, परिकर भी नित्य है, उनकी परिभाषाएं भी भक्ति की नित्य है, किंतु उनका क्रम विकास होता है। आज तक जो कितनी भी हो गई थी भक्ति की परिभाषा, उसका क्रम विकास होते होते आज रूप गोस्वामी के मुंह से सर्वश्रेष्ठ परिभाषा जो निकली, अब उसका ऊपर का मान अब ऊपर नहीं पड़ने वाला, बस वहीं तक। और इसमें अंत तक भक्ति के जितने भी, प्रेम के जितने भी सोपान ऊपर तक हैं, सब भाव महाभाव सब इसी के अंतर्गत में, इस परिभाषा के अंतर्गत में आ गए। साधन किसको कहते हैं? यदि आज रूप गोस्वामी नहीं रहते, जितने सहजिया है ना, वो कहते जी हमारी भी भक्ति है। जितने कर्मी लोग हैं कहते जी पितृ भक्ति ही भक्ति है। कोई कहता कुछ, किंतु रूप गोस्वामी ने सबकी पारिभाषाएं बांध दी। साधन किसको कहते हैं? कृति सद्भ्या जत भवेत् सद्भावा ससाधन विदा नित्य सिद्धस्य प्राकट्यम् इति ये बतला। अच्छा, भाव किसको कहते हैं? भाव की परिभाषा उन्होंने दी। ये सब यदि बांध नहीं देते ना, तो हम लोग कहाँ के कहाँ भटक जाते। इसलिए सब लोग, जितने बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, ये सब इनकी बातों को आदर करते हैं और इनकी बातों को प्रमाणित माना जाता है। रूप गोस्वामी भाव के लिए क्या लिखा? शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सुजन सम्य भाव रुचि भी चित्तम आसिन्न विदौत भाव। नहीं तो भाव को क्या लोग समझते? मन की एक विकार। मन अपने मन के अनुसार अनुकूल वस्तुओं को पा करके, विशेष करके संसार के विषयों में वो रमता है। और रमने की जितनी भी चीजें हैं उनमें स्त्री का पुरुष में, पुरुष का स्त्री में जो भाव है, उसी को भाव लोग समझ जाते हैं, मन की क्रिया को। किंतु उन्होंने कहा व्यतीत भावना वर्तम जत चमत्कार भारभू हृदय सप्तजले बाढ़ सदते सर सरो। भाव मन की क्रिया नहीं है, यह एक नित्य सिद्ध भाव है। वो साधन, जिन साधनों के द्वारा उसका ऊपर का चीज आच्छादन हट जाता है और जो वस्तु है वही प्रकाशित होती है। साधन के द्वारा कोई नई चीज हो जाएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। साधन से भाव भक्ति यदि मिलती है तो इसका मतलब है ये भाव भक्ति अनित्य है। इस चीज को समझो, साधन के द्वारा जो चीज की होगी वो पहले चीज नहीं थी, साधन के द्वारा हुआ। इसलिए साधन के भक्ति के द्वारा यदि भाव भक्ति यदि मिली तो ये हो गया क्या? भाव साधन के द्वारा प्रकटित, इसलिए अनित्य उसके पहले था नहीं। किंतु ऐसे नहीं, नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकटं। भाव माने वो नित्य सिद्ध है, सब समय है, उसको हृदय में प्रकट करने का नाम प्रेम के लिए कैसा कहा? एक परिभाषा बांधी प्रेम के लिए, नहीं तो सभी का जगाई मधाई सभी लोगों का प्रेम प्रेम हो जाता। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम अतिशयांकित क्या है? माने भाव पहली अवस्था है जिस प्रेम रूपी सूर्य का, वो प्रेम रूपी सूर्य जो है वो प्रेम है। भाव उसकी पहली अवस्था है, आभास है। जब कृष्ण में अनन्य ममता होगी, ऐसी ममता कैसी? अनन्य ममता है? अनन्य ममता तो किसी दूसरे जगह का ही है। भक्त समझ दुकान है, कृष्ण में अनन्य ममता होगी। प्रेम का पहला ये लक्षण है, ममता है नहीं, अप्रेम हो जाएगा। ये होगा पहले ममता, इसलिए पहले संबंध, इसके बाद में ममता। बिना ममता के प्रेम कभी संभव पर नहीं हो सकता है, इसलिए उसको बांध दिया। प्रेम आत्मा की वस्तु है, मन की नहीं, शरीर की नहीं। और उस आत्मा का परम पिता जो परमात्मा है, कृष्ण है, जो सबसे अधिक रस स्वरूप वस्तु है, उनके प्रति आत्यंतिक ममता यदि लगे और उससे चित्त एकदम द्रवित होने लगे। चित्त द्रवित नहीं होने से नहीं होगा, जो ममता होगी चित्त भी द्रवित होगा। और चित्त को वो कृष्ण विभावित भावनाएं चित्त को द्रवित करने अतिशयांकित अत्यंत अधिक रूप में सब उसको कहते हैं प्रेम। इसके बाद में देखो प्रेम की परिभाषा दी, स्नेह की परिभाषा दी, मान की परिभाषा दी, ईश्वर से स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव कहाँ तक लेकर के एक एक परिभाषा देते चले गए जो आज तक कहीं नहीं देखा जाता। ऐसे रूप गोस्वामी है। आज समय बहुत अधिक हो गया, प्रायिक हो गया, वैष्णवों को बहुत कष्ट देना हुआ। वैष्णवों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मेरी इस भ्रष्टता को लोग समाज क्षमा करेंगे और शाम को आप लोग 5 बजे आएंगे। इस उत्कम एट 5 हम लोग फिर इसको आरंभ करेंगे और उनके विशेष विशेष विषयों पर हम प्रत्यालोचना करके और हम लोग बतलाने की या समझने की चेष्टा। साथ साथ में आप सभी लोग आएंगे 4 बजे। 4 बजे से ही हम लोग झूला का कीर्तन आरंभ करेंगे। कृष्णालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः आददानस्त्रीणं दन्तैरिदं जाति पुनः पुनः श्रीमदरूपदं भोजधूलि व्यात् जन्मनि जन्म श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर श्रीमती राधिका जी के एक अनिष्ट सेविका रूप गोस्वामी जी की शिरोभाव तिथि है। आज इसके उपलक्ष्य में हम सभी लोग सेवा कुंज के अंतर्गत राधा दामोदर जी के मंदिर में, जहाँ रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी थी, प्यारा करके वो भजन किया करते थे, और भजन करते करते जहाँ पर उन्होंने अंतिम समाधि ली वहाँ पर हम लोग गए और उनकी रूप गोस्वामी के चरणों में अपनी भावभीनी पुष्पांजलि अर्पित हम लोगों ने की। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आकर उनके संबंध में विभिन्न वक्ताओं ने उनके उपदेशों और शिक्षाओं के माध्यम से उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित। विशेषतः रूप गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को कैसे स्थापित किया जगत में, कुछ कुछ हम लोगों ने इसके संबंध में बोला है। अभी जो वक्ता रह गए हैं ये लोग कुछ कुछ बोलेंगे और अंत में अवकाश मिलेगा तो मैं भी बोलूँगा। और अभी 5 दिन हम लोग यहाँ रहेंगे ना, पूर्णिमा तक रहेंगे, यही सब कथाएँ यहाँ पर आलोचित होंगी। अभी नाम
कृष्ण
ज्ञानंजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमः। हम लोग सवेरे से अभी तक तिलरूप गोस्वामी की महिमा में, उनके अपराकृत जीवन और उनकी शिक्षाओं के संबंध में हम लोग कुछ बोल रहे हैं। और रात्रि का भी समय हुआ है, मैं केवल एक विषय उनके संबंध में कुछ अपने उनके ऊपर में अपना भाव प्रकाश करके मैं वक्तव्य समाप्त करूँगा। इसके बाद में आरती होगी और फिर कल हम लोग इसके संबंध में बैठ करके अनुशीलन करेंगे। एक बात, आजकल गौड़ीय वैष्णव में आजकल विशेष करके अमेरिका इत्यादि विदेशों में एक विषय बना है कि विप्रलम्ब भाव ही सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि लीला के दो छोर हैं, एक छोर है विप्रलम्ब और दूसरा संभोग, संभोग माने लीला, किंतु विप्रलम्ब ही श्रेष्ठ है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, कहीं कहीं पर कि प्रलम्ब की बहुत महिमा बतलाई गई है, बात ठीक है, किंतु सचमुच में क्या बात है, रूप गोस्वामी जी की इस विषय में क्या दृष्टि है, ग्रंथों में कैसे उन्होंने इस विषय को प्रकाश किया है, हमारे आचार्यों ने विशेष करके सप्तम गोस्वामी के बाद में अष्टम गोस्वामी श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी इस विषय को किस दृष्टि से ग्रहण कर रहे हैं, इसी विषय में मैं दो एक बात बतलाऊं। भक्ति गोस्वामी सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि में भक्ति के प्रसंग में हमने सवेरे बतलाया था, रूप गोस्वामी ने कृष्ण कौन है, भक्ति किसको कहते हैं, साधन किसको कहते हैं, भाव किसको कहते हैं, राग किसको कहते हैं और राग किसको कहते हैं, फिर रागानुगा और रागात्मिका किसको कहते हैं, और भक्ति के श्रद्धा से लेकर अंतिम स्थिति भाव महाभाव इत्यादि तक के लिए सबकी परिभाषाएं बतलाई है, उसका लक्षण बतलाया। जैसे एक साधारण चीज को ही ले ले हम, जब भाव भक्ति का वो विचार कर रहे हैं तो भाव किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा किसको कहते हैं और उसके लक्षण क्या है और उस भाव की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सबका यथाजथ वर्णन किया, जिससे साधक इन चीजों को पहले समझे, समझ करके फिर उसमें प्रवेश कैसे करे, उसकी उपलब्धि कैसे करे और दूसरों को भी वह समझ सके कि इसमें यथार्थतः भाव है या केवल सहजियागिरी है या केवल दिखलाने के लिए है। जब तक इन विषयों का ज्ञान नहीं रहेगा तब तक आदमी मिसगाइड हो जाता है, कुभाव को ही भाव, कुरस को ही रस, कुसिद्धांत को ही सुसिद्धांत समझने के लिए बाध्य रहता है, उसके समझ में ही कुछ नहीं आता। जिसको भाव नहीं है उसी को भाव समझ लेता है। इसलिए पहले हम इसको बतला रहे हैं, जैसे भाव है, भाव के लिए उन्होंने बतलाया शुद्ध सत्व, विशेष आत्मा, प्रेम सूर्यां साम्य भाग, रुचि भी चित्तम माशून्य कृतसौ भाव उच्यते। ये परिभाषा दी। भाव किसको कहा जाएगा, आंख से आंसू आने लगा, कुछ एक सुन करके और झट ऐसे ऐसे शरीर में कुछ विकार दिखलाया, गिर गए, मुख से लार टपकने लगे, ये भाव नहीं हो सकता। हो सकता है कि या रसाभास हो या रसदुष्ट हो, मुक्ति के लिए भी ऐसे हो सकते हैं। इसलिए चित्त द्रवित नहीं हो और तब ये सब चीजें हो तो समझना चाहिए भाव नहीं। इसलिए भाव को समझाने के लिए उन्होंने कहा शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। विशेष आत्मा शुद्ध सत्व किसको कहते हैं, कृष्ण के नित्य लीला परिकरों में कृष्ण के प्रति जो सेवा की और प्रेम की भावना है वो उनमें नित्य स्थित है, नित्य परिकरों में। जैसे जसोदार श्री नंद बाबा में बात्सल्य रस, बात्सल्य का भाव नित्य स्थित, सुबल सिदान इत्यादि सखाओं में सखरस का यह भाव उनमें नित्य सिद्ध है। गोपियों में विभिन्न गोपियों में विभिन्न प्रकार के माधुर्य रस ये नित्य उनमें अवस्थित है। किसी साधक को उसको पाने का लोभ हो गया कहीं से सुनकर, अथवा भगवान की विशेष कृपा से या उनके अनुगत जनों के भक्तों की विशेष अहित की कृपा से यदि हो गया तो उनके चरणों का अनुगमन किनके, उन परिकरों का, सुबल सिदाम नंद जसोदा और गोपियों के अनुगत में उनके भावों को अनुशीलन करने लगे। कैसे अनुशीलन करने लगे? रूप गोस्वामी ही पहले पाल आचार्य हैं जो अष्टकाव्य लीला का सूत्र बनाया, आठ, पहले एक और एक से फिर आठ। इसका सूत्र जो ये अर्वाचीन है ऐसा नहीं, बल्कि कौन पद्म पुराण इत्यादि में शिव पार्वती संवाद में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उसको उद्धृत किया है जैवधर्म में और शिक्षा चैतन्य शिक्षा मृत में उसको उद्धृत किया है। ये नवीन चीज नहीं है, है नित्य, किंतु उन्होंने उसी बात को नए बोतल में, नई भाषा में, नई भावों में जगत में उन्होंने परिवेशन किया। इसलिए अष्टकालीय लीला चिंतन का एक श्लोक बतलाया, उसमें आठों याम की बातें बतलाई और फिर आठ श्लोकों में एक एक याम की बातें बतलाई और कैसे उसका अनुशीलन किया जाए इसको कवि कर्णपुर ने, श्री राजीव गोस्वामी ने इसमें जीव गोस्वामी ने मोटी गोपाल चंपू में, कृष्ण कवि कर्णपुर ने आनंद वृंदावन चंपू में और इसके बाद में फिर नहीं इसके बाद में फिर उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोविंद लीलामृत में और इसके बाद में चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बाकी रह गया लेकर के भर करके उसको पूरा कर दिया। किंतु मूल उत्साह है किसका? तो साधक जिसको रुचि होगी उनमें से जिनके प्रति रुचि है उनके भावों को, उनकी क्रियाओं को, उनके व्यवहारों को अपने जीवन में अनुशीलन करेगा उसी आठ काल के माध्यम से। किंतु किसको? जिसको भाव उत्पन्न है उसको, इसके पहले नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में इसको अच्छी तरह से दिखलाया, इसका कौन अधिकारी है? नहीं तो सहजियागिरी हो जाएगी। इसलिए रूप गोस्वामी ने कैसे उसको पाया जाएगा भाव, इसके लिए ये पद्धति निकाली। तो ये पद्धति को गुरु पदार्थ होकर के वैसे गुरु से प्राप्त करके वैसा करेंगे तो वो जो नित्य सिद्ध भाव है वो हृदय में, वो क्या है? शुद्ध सत्व है। और चित्त को कोमल कर देता है, रुचि भी चित्तम मात्रम रुचि, रुचि के बाद रुचि माने क्या? कृष्ण विभावित रुचि और भक्ति के द्वारा निर्मल हुआ हृदय, हृदय माने यहाँ पर चित्त। तो वो जो रुचि है वो हृदय को विभावित करके रसस्थ कर दे और द्रवित कर दे और वो संदीप और ग्लादनी की तार वृत्ति उसी को सुप्रसस्थ करते हैं। वही नित्य सिद्ध परिकरों में रहती है, वही यहाँ पर काम करती है। वो जैसे काफी नक्षत्र का पानी किसी बर्तन में रख दिया जाए तो वहां पर मोती हो जाएगी, वहां मोती नहीं होगी। हिमालय पहाड़ के ऊपर भी